दिन भर तारीख 13 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। भ्रष्टाचार मामले में सजा पाए पूर्व पीएम नवाज शरीफ लौट रहे हैं पाकिस्तान। लाहौर में कड़ा पहरा, समर्थकों पर रोक।
बंदूकों वाले एक हाथी लड़की से डरते हैं बंदूक।
विधायकों के बागी तेवरों के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोली,
दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे।
और विवेचना में रिहान फजल से सुनिए, इंदिरा गांधी के दौर में भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहे जाने वाले पीएन हक्सर की कहानी।
मई 67 से लेकर जनवरी 73, 5.5 साल में जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया उसमें हक्सर साहब का हाथ था। वो इंदिरा गांधी को सीधा बोल देते थे, नहीं आप गलत कह रही है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मुकेश शर्मा से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज लंदन से अबू धाबी होते हुए लाहौर लौट रहे हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें दोषी मानते हुए इस महीने सजा सुनाई गई थी। शरीफ की वापसी के मौके पर उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि उनके सैकड़ों समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि शरीफ को पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अबू धाबी हवाई अड्डे पर बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की चुनी हुई सरकार के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है उससे आगामी चुनाव की विश्वसनीयता खो रही है। शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने से पहले हजारों पुलिसकर्मियों को एहतियातन तैनात किया गया है। उनके साथ उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ भी पाकिस्तान लौट रही हैं और उन्हें भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। उधर पाकिस्तान में ही विभिन्न चुनावी रैलियों में हुए बम धमाकों में कम 14 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक पहला धमाका बलूचिस्तान में हुआ, जहां एक स्थानीय राजनेता के काफिले को निशाना बनाया गया। उस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले उत्तर के नगर बन्नू में एक क्षेत्रीय नेता के काफिले में हुए विस्फोट में 4 लोग मारे गए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने लंदन के बाहर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने एक ब्रिटानी अखबार में छपे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मे की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि उस लेख में वो हिस्सा नहीं छापा गया जहां उन्होंने मे की तारीफ की थी और वो खबर एक फेक न्यूज जैसी है। मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री मे को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने का जो फैसला है उससे अमरीका के साथ ब्रिटेन का व्यापार प्रभावित न हो। इस बैठक में जाने से पहले ट्रंप ने कहा,
Today we're talking trade, we're talking military. We just looked at some incredible...
आज हम व्यापार की, सेना की बात कर रहे हैं। आज हमने आतंकवाद निरोधक कुछ अविश्वसनीय चीजें देखी हैं जो अमेरिका के सहयोग से हो रही हैं। ये रिश्ता काफी मजबूत है, हमारा रिश्ता काफी अच्छा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। उधर प्रधानमंत्री मे ने कहा कि दोनों के बीच एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर बातचीत हुई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइली सेना का कहना है कि उसने सीरिया की ओर से उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक ड्रोन पर मिसाइल से हमला किया है। इससे 2 दिन पहले ही गैलीली सागर के पास इसराइल ने एक पायलट रहित सीरियाई विमान को निशाना बनाकर गिरा दिया था। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने बेरोजगारी के खिलाफ लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए दक्षिणी शहर बसरा की यात्रा की है। ये विरोध प्रदर्शन रविवार से हो रहे हैं और एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद से इन प्रदर्शनों में तेजी आई है। चीन और अमेरिका के बीच आयात शुल्क को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन के अमेरिका को आयात में बढ़ोतरी हुई है। जून महीने में चीन ने अमेरिका से जितना सामान खरीदा उसके मुकाबले उसने 29 अरब डॉलर ज्यादा का सामान निर्यात किया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बढ़ाए गए आयात शुल्क के लागू होने से पहले चीन जितना निर्यात करता था आज भी वो उतना ही निर्यात कर रहा है। आर्थिक मामलों के बीबीसी संवाददाता के मुताबिक ये ताज़ा आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी को और बढ़ा सकते हैं। तमिलनाडु में पुलिस ने एक सुरक्षा अभ्यास के दौरान विश्वविद्यालय की एक छात्रा की मौत के बाद प्रशिक्षक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि एन लोगेश्वरी को एक इमारत की दूसरी मंजिल से कूदने के लिए मजबूर किया गया। नीचे छात्रों का एक दल सुरक्षा जाल के साथ खड़ा था, मगर पहली मंजिल पर वो कंक्रीट की छत पर जा गिरी और उसे घातक चोटें आईं। प्रशिक्षक पर उस छात्रा को मजबूर करने का आरोप लगाया गया है क्योंकि वो कूदना नहीं चाहती थी। ये पूरा घटनाक्रम वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था और सोशल मीडिया पर शेयर होने के चलते लोगों में काफी गुस्सा देखा गया है। जर्मनी में अधिकारियों ने एक ट्यूनिशियाई व्यक्ति को ओसामा बिन लादेन का कथित अंगरक्षक होने के नाते निर्वासित कर दिया है। उस व्यक्ति की पहचान समी ए के तौर पर बताई गई है और उसने अलकायदा नेता के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। ये आवाजें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के समर्थकों की है। नवाज शरीफ और मरियम आज अब से कुछ देर में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बीते हफ्ते पाकिस्तान की एक कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को 10 और मरियम को 7 साल की सजा सुनाई थी। उनका विमान कुछ वक्त बाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगा। लाहौर पुलिस ने नवाज शरीफ के समर्थकों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोकने के लिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। नवाज शरीफ ने अबू धाबी में बीबीसी से बात की और बताया कि उनके हजारों समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। उधर पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। बीते हफ्ते जिस वक्त कोर्ट का आदेश आया तब नवाज शरीफ अपनी पत्नी के इलाज के लिए लंदन में थे। आज लंदन से रवाना होने के पहले नवाज शरीफ ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वो जानते हैं कि उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। नवाज शरीफ ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
मेरे बस में है और जो मेरे बस में था मैंने वो कर दिया है।
नवाज शरीफ कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए लोगों से समर्थन देने की अपील कर रहे थे। बीबीसी के ताहिर इमरान के मुताबिक लंदन से नवाज शरीफ जिस वक्त अबू धाबी पहुंचे तो वहां उनके विमान के चारों ओर सुरक्षा का सख्त पहरा था। लोगों को तस्वीर लेने से भी रोका जा रहा था। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने भी लोगों से समर्थन की अपील की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
जुमे की नमाज अदा करने के बाद आप अल्लाह का नाम लें, मेरे साथ एयरपोर्ट चलें और इस मुल्क के अंदर तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा करें।
ताजा अपडेट के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। जी शुमाइला, हम आपसे जानना चाहेंगे नवाज शरीफ कब तक पहुंच रहे हैं और वहां क्या कुछ चल रहा है इस समय।
जी पाकिस्तान में से और फ्लाइट जो है वो पहले तो 6:15 बजे लैंड होनी थी लेकिन फिर उसमें डिले हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये तकरीबन 9:15 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक रात 10:45 बजे शायद ये लैंड कर जाएंगे।
जी
दिन भर जो है वो बहुत यहाँ पर हालात जो है वो काफी टेंस हैं, खासतौर पर लाहौर जो कि नवाज शरीफ की पावर बेस है जहाँ उनका पार्टी हेडक्वार्टर है वहां पे काफी स्कफल्स और झड़पें होती रही हैं उनके सपोर्टर्स के दरमियान में और पुलिस के दरमियान में। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त सिचुएशन टेंस है वो लाहौर में है।
जी सिचुएशन आप बता रहे हैं कि टेंस है और नवाज शरीफ ने जैसा कहा कि उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, तो क्या इरादा है वहां प्रशासन का? उन्हें बताया जा रहा है कि पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी कोर्ट में भी पेशी होनी है, क्या ये सब कुछ आज हो पाएगा?
देखिए अभी क्या हो पाएगा ये तो डिपेंड करता है कि वो कब तक लैंड करेंगे। तो कोर्ट तो बंद हो जाते हैं लेकिन जाहिर है ये स्टेट है और स्टेट के पास इख्तियार है कि अगर कोई जज रात को बिठा ले तो मतलब इसके बारे में तो अभी बहुत सारी और अजम्पशन लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जिन्होंने अरेस्ट करना है जिस इदारे ने उन्हें उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो कुछ ऑन बोर्ड भी हैं और कुछ एयरपोर्ट में मौजूद है लाहौर एयरपोर्ट पे भी। तो अभी तक जो बातें चल रही हैं उसमें एक वो ख्याल किया जा रहा है कि जो ही एयरपोर्ट पे वो पहुंचेंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ की और उनकी जो बेटी है मरियम नवाज उनकी ये कोशिश है कि उनको जाने दिया जाए, इमिग्रेशन करने दिया जाए, उसके बाद एयरपोर्ट पे जो उन्होंने अपने सपोर्टर्स को जमा करने की इकट्ठा करने की कॉल दी थी उनको वहां पे उनको एड्रेस करने दिया जाए अपने सपोर्टर्स को। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट ऑलरेडी लाहौर में हो चुकी है और अगर ये इजाजत दे दी जाए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो अथॉरिटीज ने लाहौर जो एयरपोर्ट है उसको बिल्कुल सील कर दिया है और कई कई किलोमीटर दूर तक उधर रुका
जी
इसको बंद कर दिया गया।
जी बहुत शुक्रिया शुमाइला इस पूरी जानकारी के लिए। हम अगले बुलेटिनों के लिए आपसे फिर अपडेट लेंगे। पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव होने हैं। नवाज शरीफ चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव पर इस पूरे मामले का कोई असर होगा? मैंने यह सवाल किया इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी से।
असर तो होगा, लेकिन जितना नवाज शरीफ समझ रहे हैं गालिबन उतना असर नहीं होगा। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में और इंडिया में भी और बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें इलेक्शन का एक कल्चर होता है और उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उम्मीदवार कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अपना वोट बैंक कितना है, उसने लोक हल्के में कितना काम करवाया है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, खासतौर पर रूरल एरियाज में। और पाकिस्तान में 70% सीट जो है वो रूरल एरिया से है। लेकिन नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है, जो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रहे हैं, वो पॉपुलर हो रहा है, इसलिए शायद उसका असर कोई अर्बन सीट्स पे तो हो, कोई 5% या 10%।
जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं खासतौर पर 70s के बाद, जनता उनको चुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो सेना की तरफ से इस बार देखा जा रहा है, जुडिशरी का एक जजमेंट आया जिसकी वजह से इनको पहले कुर्सी छोड़नी पड़ी, अब इनको जेल की सजा हुई है, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर होना अपने आप में दिक्कतों को आमंत्रित करना है?
देखिए, एक बात जो बहुत वाजे और क्लियर होकर सामने आ गई है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे। उस एस्टेब्लिशमेंट में फौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और अब उसमें अदलिया भी, कोर्ट्स भी शामिल हो गई हैं। जब वो 1-2 करोड़ वोट लेकर लोगों की नुमाइंदा बन के जब वो असेंबली में पहुंचते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचते हैं, तो वो बजा तौर पर राइटली ये समझते हैं कि कौम की फैसले करने का जो मैंडेट है लोगों ने उन्हें दिया है। लेकिन जब वो फैसला करना शुरू करते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जब वो फ्रिक्शन पैदा होती है तो उससे हालात खराब होते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। नवाज शरीफ के बारे में अब ये बात साबित हो चुकी है कि वो इस मामले में डिप्लोमेटिक नहीं है। उन्हें अपने इख्तियारात पर जो लोग कब्जा करना चाहते हैं वो उन्हें पसंद नहीं है, वो उसको फाइट बैक करते हैं, और नतीजे के तौर पर वो हर दफा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने और 3 दफा निकाल दिए गए।
सवाल यह है कि क्या इस बार नवाज शरीफ फाइट बैक कर पाएंगे? इस्लामाबाद से जानकारी दे रहे थे आसिफ फारूकी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे। वहीं बागी तेवर अपनाए पीडीपी के विधायकों का कहना है कि महबूबा ब्लैकमेल की राजनीति कर रही हैं। उधर बीजेपी ने भी महबूबा पर हमला बोला है। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
1987 में हुई चुनावी धांधलियों का जिक्र करते हुए महबूबा ने कहा कि इनकी पार्टी के साथ छेड़छाड़ की गई तो हालात गंभीर हो जाएंगे।
इस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हकूक पे, वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाहुद्दीन, एक यासीन मलिक ने जन्म लिया।
1931 में महाराजा की सेना द्वारा दर्जनों लोगों की हत्या की पुण्यतिथि के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महबूबा ने कहा कि कश्मीर में पार्टियों का जोड़ तोड़ दिल्ली के मर्जी के बिना संभव नहीं है।
दिल्ली के बगैर कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकती है। अगर किसी तरह से दिल्ली ने इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे।
गौरतलब है कि 19 जून को भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद राज्य में गवर्नर शासन लागू किया गया, लेकिन तब से ही पीडीपी के अंदर खलबली मची हुई है। 5 विधायकों के खुलेआम बगावत करने के बाद अब महबूबा एक एक करके अपने विधायकों से मुलाकातें कर रही हैं। पीडीपी के एक नाराज विधायक इमरान अंसारी ने ट्विटर पर महबूबा के बयान को ब्लैकमेल जताया और कहा कि 1990 की धमकी देना उचित नहीं, क्योंकि महबूबा के शासन में उससे भी गंभीर स्थिति पैदा हो गई। बागी विधायकों ने महबूबा पर राजवंश राजनीति का आरोप लगाया है और कहा है कि महबूबा के परिवार के सदस्यों की हरकतों से ही बीजेपी को गठबंधन से निकलना पड़ा। एक तरफ स्थिति की खराबी का मलबा भी महबूबा के ही कांधों पर गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ इनकी पार्टी भी टूट फूट का शिकार हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि महबूबा की लोकप्रियता तो पहले ही बुरी तरह प्रभावित है और अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो अपनी पार्टी को टूट फूट से बचा पाएंगी। राज्य में नई सरकार गठित करने के बारे में भी आजकल कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के गठन गठन में दिलचस्पी नहीं रखती, परंतु ये खबरें आम हैं कि अमरनाथ यात्रा समाप्त होते ही सजाद लोन के नेतृत्व में एक नया फ्रंट बनेगा जो भाजपा के समर्थन से नई सरकार गठित करेगा। 87 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 44 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। बीजेपी के पास 25 सीटें हैं और सजाद लोन के पास 2। सजाद के बारे में ये अफवाहें गर्म हैं कि इन्हें पीडीपी से कम अज कम 15 नाराज विधायकों का समर्थन हासिल है। इस बीच आज शहीद दिवस पर जहां राज्य में छुट्टी रही, वहीं अलगाववादियों की कॉल पर हड़ताल की गई। गौरतलब है कि 13 जुलाई को महाराजा हरि सिंह के शासन में सेंट्रल जेल में कैदियों के एक समारोह पर डोगरा सेना ने फायरिंग की, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। पूरी घाटी में आंदोलन छिड़ गया और इस आंदोलन के 16 वर्ष बाद भारत आजाद हो गया और जम्मू कश्मीर में 100 वर्ष का डोगरा राज भी खत्म हो गया। सरकार इस दिवस को लोकतंत्र की आधारशिला कहती है और अलगाववादी कहते हैं कि इस दिन कश्मीरियों ने जो आंदोलन शुरू किया वो अब भी जारी है। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
बीबीसी इंडिया बोल।
ताजमहल के प्रति सरकार की बेरुखी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में केंद्र सरकार से कहा, नहीं बचा सकते तो गिरा दें ताजमहल को। क्या मुगलिया इमारत की वाकई किसी को परवाह नहीं? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 14 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीएन हक्सर को उस जमाने में इंदिरा गांधी के बाद भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की सभी सफलताओं के पीछे हक्सर का हाथ था। हाल ही में जयराम रमेश की एक किताब प्रकाशित हुई है, इंटरट्वाइंड लाइफ्स पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी, जिसमें उन्होंने इन दोनों के संबंधों का रोचक विश्लेषण किया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं पीएन हक्सर के जीवन के दिलचस्प प्रसंगों पर।
इंदिरा गांधी के जमाने में मशहूर कश्मीरी माफिया का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कोई कैबिनेट मिनिस्टर या चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ नौकरशाह था। उनका नाम था परमेश्वर नारायण हक्सर। 1967 में जब वो ब्रिटेन में भारत के उप उच्चायुक्त थे, इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना सचिव नियुक्त किया था। बहुचर्चित किताब इंटरट्वाइंड लाइफ्स पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी लिखने वाले जयराम रमेश बताते हैं,
लेफ्टिस्ट विचारधारा से वो जुड़े हुए थे, पर वो डिप्लोमेट थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में उनको शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने उनको इलाहाबाद से बुलाया। वो तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ काटजू जैसे महान वकीलों के साथ काम कर रहे थे। 6 मई 1967 में इंदिरा गांधी ने उनको अपना सचिव बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो उनका सचिव ऐसा हो जिनके साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ते हों पर एक डेफिनेट आइडियोलॉजी भी हो। वो नई नई प्रधानमंत्री थी। जो हम आज इंदिरा गांधी के बारे में सोचते हैं, पहले 2.5 साल में दिखाई नहीं देता था, बोलती ज़्यादा नहीं थी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, कोई जानते नहीं थे। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े महान लोग थे, कामराज, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, वाईबी चौहान, संजीव रेड्डी, वो सोचते थे कि क्या औरत आई है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, क्या कर पाएगी, वो हम इनको कंट्रोल करेंगे, यही उनके मन में था। तो इन हालात में, इन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने हक्सर को अपना सचिव बनाया। और मुझे पूरा विश्वास है इन 5.5 सालों में, यानी कि मई 1967 से लेकर जनवरी 1973, 5.5 साल में जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया, उसमें हक्सर साहब का हाथ था। और हक्सर साहब का एक खूबी थी कि वो इंदिरा गांधी को सीधा बोल देते थे, नहीं आप गलत कह रही हैं, आप गलत कर रही हैं।
1969 से लेकर 1973 तक इंदिरा गांधी ने जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनके पीछे परमेश्वर नारायण हक्सर का हाथ था।
1972 तक हक्सर साहब पर बहुत निर्भर करती थी। 1971 में बांग्लादेश के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, शिमला समझौता जुलाई 1972 में, और जब अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, इंडो सोवियत ट्रीटी जो हुआ, उसमें भी हक्सर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। 5.5 साल में बिल्कुल साफ है कि इंदिरा गांधी ने एक कदम नहीं ऐसा लिया जहां हक्सर साहब का परछाई नहीं हो, अक्सर साहब का हाथ ना हो, और अक्सर साहब ने कहा ना हो इंदिरा जी को कि ये करिए। वो सलाहकार थे, इंदिरा गांधी के बिना हक्सर संभव नहीं थे। हक्सर साहब कोई स्वयंभू नहीं थे, वो कहीं से आर नहीं टिपके। इंदिरा गांधी ने उनको बनाया, इंदिरा गांधी ने उनको अपने साथ बिठाया, इंदिरा गांधी ने उनको अधिकार दिया। इंदिरा गांधी और अक्सर साहब के बीच में जो जुगलबंदी थी, बहुत बढ़िया जुगलबंदी थी। जब इंदिरा गांधी माउंट एवरेस्ट पर जा पहुंची 1971 में, पहले चुनाव में उनको 2/3 बहुमत मिला, बाद में बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हुआ दुनिया भर में, और दिसंबर के महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दुर्गा आप तो दुर्गा हो, तो इस सब में अक्सर साहब का हाथ है।
अक्सर एक चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक थे, पढ़े लिखे थे, मजाकिया थे, और उनमें बातचीत करने का गजब का सलीका था। अक्सर का ही बूता था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय को कैबिनेट सचिव के कार्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो न सिर्फ अपने जमाने में भारत के सबसे ताकतवर नौकरशाह थे, बल्कि इंदिरा गांधी के बाद भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। और उनकी इस ताकत का कारण इंदिरा गांधी नहीं थी, अक्सर के समय प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन बताते हैं।
जब तक वो रहे तो उनका पूरा कंट्रोल था, ऑफिस में सब बातें जानते थे, और इतने सहज स्वभाव के थे कि कुछ बात होगी पीएम से मिलकर लौट रहे हैं, मेरे कमरे में रुक जाएंगे, बिशन कॉफी मंगवा दे। इतना सहज स्वभाव था उनका, और हर चीज पे वो मदद करने को तैयार रहते थे, आपकी बात सुनने को तैयार रहते थे, आपकी गलती हो तो आपको बता देते थे कि गलती है, आपको अगर सहमत होते थे तो कहते थे बिल्कुल ठीक है तुम इसी पर डटे रहना। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पीएम ने हमसे कहा कि भाई आप एक वो बनाइए कैबिनेट रिशफल के प्रपोजल्स, दो चार चीज़ें उन्होंने बता दी, तो मैंने पीएम को बना के हिसाब इसका ये है, इसके डिपार्टमेंट में ये है, ऑल उसकी बेसिस पे। जब उन्होंने नोट वोट पढ़ लिया, सुबह में मिला उनसे तो कहने लगे हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बोले कि आपने इनको तो इसमें कहीं रखा ही नहीं है, इनको आप इनको मंत्री बनाएंगे? कहने क्यों? मैंने कहा कि साहब मैं तो इन्हें इसके उपयुक्त नहीं समझता हूँ, इतने योग्य नहीं समझता हूँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए इसका राजनीतिक पहलू ये है, इसमें मुझे ये ज़रूरत है, ये है, ये कुछ गरम गरम बातें हो रही थी। इतने में अक्सर साहब ने कबाड़ खोला, उनका ये ख्याल था कि अक्सर साहब उनको सपोर्ट करेंगे उस व्यक्ति के बारे में। उनका देखिए टंडन जी इनको मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनका ही इज़ ऑफ़ कोर्स वेरी राइट, why you want him to be, then wind up your proposal for cabinet reshuffle and forget about it. इस तरह के आदमी थे।
1971 के युद्ध के दौरान कूटनीति के मैदान में पीएन अक्सर का मुकाबला अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अक्सर किसिंजर पर भारी पड़े थे। 1986 में अमेरिका में रूस के राजदूत रहे अनाटोली डॉब्रिनिन को पीएन अक्सर से जब मिलवाया गया तो उनके पहले शब्द थे ग्लैड टू मीट द मैन हु आउटविटेड हेनरी किसिंजर।
अक्सर साहब ने डॉब्रिनिन को कहा डू आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नो ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। 1971 में जब इतिहास लिखा जाएगा, और कई लोगों ने किताब भी लिखा है, रिचर्ड निक्सन और किसिंगर की भूमिका बहुत नकारात्मक थी, भारत के नज़रिए से बहुत नकारात्मक थी, और उन्होंने कुछ समर्थन नहीं दिया, कुछ सहानुभूति भी नहीं प्रकट की, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं था। किसिंजर यहाँ आए, अक्सर साहब से लंबी बातचीत हुई, अक्सर साहब इंदिरा जी के साथ गए नवंबर में, वॉशिंगटन में बातचीत हुई। पर मैं कह सकता हूँ कि किसिंगर के जीवन में अगर एक व्यक्ति है जिन्होंने किसिंगर को बुद्धू बनाया, वो अक्सर साहब है। और 1971 में किसिंजर और निक्सन सबसे, अगर आप देखें, बहुत लोग कहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी महान कारनामे हैं, चीन के साथ उन्होंने संबंध रिश्ते किए, रूस सोवियत संघ के साथ उन्होंने समझौता किया, पर हिंदुस्तान के मामले में वो मार खा गए। अगर एक आदमी ने किसिंगर को मार खिलवाया वो अक्सर साहब थे।
1972 में शिमला समझौता बातचीत के दौरान जब डीपी धर को दिल का दौरा पड़ गया तो अक्सर को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बनाया गया। जब शिमला समझौते की मंत्रिमंडल से स्वीकृति की बात आई तो इंदिरा गांधी ने इसकी जिम्मेदारी पीएन अक्सर को दी। इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार रहे एच वाई शारदा प्रसाद लिखते हैं,
मुझे अच्छी तरह याद है जब मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति के सामने इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से जीती हुई जमीन और 93,000 युद्ध बंदियों को लौटाने का प्रस्ताव रखा तो लगा जैसे सभी मंत्रियों को सांप सूंघ गया हो। तब उन्होंने हक्सर से कहा कि वो इन लोगों को उनके इस प्रस्ताव का कारण समझाएं। हक्सर ने पूरे 45 मिनट तक अपने तर्क रखे। ये प्रेजेंटेशन राजनीतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ का बेहतरीन नमूना था। हक्सर के भाषण के बाद इंदिरा ने वही प्रस्ताव दोबारा रखा और एक एक करके जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान, स्वर्ण सिंह और फखरुद्दीन अली अहमद ने उनका समर्थन किया।
पीएन हक्सर शायद अकेले शख्स थे जिन्हें दो अलग अलग सरकारों ने पद्म विभूषण देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।
इंदिरा गांधी ने कोशिश की, जनवरी 1973 में हक्सर साहब ने कहा नहीं, और 1998 में उनके मरने के कुछ 1.5 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए, पर दोनों बार अक्सर साहब ने कहा मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैंने काम किया है, कुछ योगदान है मेरा, वही बस मेरे लिए काफी है। और देखिए कुछ लोग पद्मश्री पद्म विभूषण नकारते हैं और फौरन प्रेस रिलीज दे देते हैं, अक्सर साहब ने किसी को नहीं कहा।
और वो इंदिरा गांधी के भी खिलाफ थे कि वो भारत रत्न ना स्वीकार करें।
जब वीवी गिरी ने कहा भारत रत्न मैं आपको सम्मानित करूंगा, अक्सर साहब ने कहा आप इसको स्वीकार मत कीजिए, पर उन पर ज्यादा दबाव भी था, उन्होंने स्वीकारा, पर उन्होंने ये कहा अच्छा ठीक है आप स्वीकारती हैं तो साइटेशन नहीं होगा जब आपको ये भारत रत्न दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि क्यों आपको भारत रत्न दिया जा रहा है बांग्लादेश की वजह से। ऐसे व्यक्ति आजकल बनते नहीं है।
इंदिरा गांधी को अक्सर के घर में बने कोफ्ते बहुत पसंद थे। अक्सर जब उनका दिल चाहता तो वो उसकी फरमाइश करती। उनका ख्याल था कि ये कोफ्ते अक्सर का खानसामा बनाता था। वास्तव में ये कोफ्ते अक्सर अपने हाथों से इंदिरा गांधी के लिए खुद बनाया करते थे। अक्सर का इंदिरा गांधी से मनमुटाव का कारण था संजय गांधी। अक्सर का मानना था कि संजय के मारुति प्रोजेक्ट के कारण इंदिरा गांधी की काफी बदनामी हो रही है। पीएन हक्सर की बेटी नंदिता हक्सर बताती है।
उस वक्त तक संजय गांधी काफी बड़े हो चुके थे, उनकी कुछ राय थी, उनकी कुछ पॉलिटिक्स भी थी, तो पापा इंदिरा जी को मना करते रहते थे कि भाई इस पे जरा रोक लगाओ, और उनको शायद बुरा लगा या संजय को बुरा लगा। तो जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई उस दिन बाबा के चाचा जो थे पंडित ब्रदर्स में कनॉट प्लेस में उनकी दुकान थी, वो 80 साल के थे, उनको अरेस्ट करके ले गए थे पुलिस स्टेशन। फिर वो हमारी बुआ के पास आए उनको अरेस्ट करने, पुप्पा जी के पास आए, माँ के पास भी आए। तो उस वक्त इस तरह का माहौल हो गया था कि एक दिन तो वो बहुत सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट माने जाते थे और अगले दिन कोई वकील इनका केस करने को तैयार नहीं था।
दिलचस्प बात ये थी कि जब अक्सर के चाचा के साथ ये सलूक हो रहा था, अक्सर योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और इस हैसियत से इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुआ करते थे
और इंदिरा गांधी को देखते थे और इंदिरा गांधी और कहीं देखती थी। मैं सोचने लगा यार अगर मैं इनके जगह होता मैं इस्तीफा दे देता, पर इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। और मेरे मन में यही विचार आता है कि अक्सर साहब प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में कुछ अंतर रखते थे, और ठीक है मैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप, मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ योजना आयोग का, प्रधानमंत्री का सलाहकार हूँ, मैं करते रहूँगा, पर जो कुछ ये लोग मेरे परिवार पर जुल्म करेंगे वो करते रहने दीजिए और जो कानून है वो कानून देखेंगे। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, किसी को कहा नहीं, किसी को फ़ोन नहीं किया, प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं की, प्रधानमंत्री को खत नहीं लिखा।
किसी भी चीज़ का विश्लेषण अक्सर से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। उनका रौब ऐसा था कि कई बार तो उनके कमरे में घुसते ही मंत्री भी उठकर खड़े हो जाया करते थे। अल्लामा इकबाल का एक शेर वो अक्सर गुनगुनाते थे, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज लंदन से अबू धाबी होते हुए लाहौर लौट रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के विरुद्ध लंदन की सड़कों पर लगभग 100,000 लोग मार्च कर रहे हैं और पूर्वी सीरिया से मिल रही खबरों के अनुसार जिहादी गुट इस्लामिक स्टेट के खुफिया ठिकानों पर हुए हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई है।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। फेसबुक प्रसारण में मदद की प्रशांत चहल ने। वात्सल्य राय का नमस्कार।